नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव विधेयक को स्वीकृति दी। विधेयक पर चार विधानसभाओं के अध्यक्षों से लिया जाएगा परामर्श। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज। प्रदेश के 912 केंद्रों पर 4,80,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में कमी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रोहतास और कैमूर जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। और भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने 8 पदक जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देशभर में लोकसभा विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए इससे संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। सरकार संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से इस विधेयक पर 4 विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श लेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से दीर्घकालीन रूप से खर्च में कमी आएगी और देश के विभिन्न हिस्से विभिन्न चुनाव के कारण पूरे साल आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं रहेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है।
नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्यों में चुनाव की वजह से जिस तरीके से मशीनरी डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से उस राज्य में विकास की योजनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है इससे उस राज्य का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि उसके बाद अगले 5 साल तक भारत का संघीय ढांचा विधिवत तरीके से देश और अलग अलग राज्यों के विकास के कार्यों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करें।
इधर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा बिल है और यह कोई नया प्रयोग नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद 1970 तक सभी चुनाव एक साथ ही होते थे।
वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा बिल है और कोई नया भी इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद 1970 तक सभी राज्य और देश के चुनाव एक साथ ही होते थे, यह कोई नया नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, जो कि जनतंत्र पर विश्वास ही नहीं करती थी, उन्हीं के समय यह परंपरा जो टूटी है वो आज तक टूटी हुई है।
इधर इस विधेयक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक देश एक चुनाव का कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध करती है। लोकसभा में आज संविधान पर 2 दिन की चर्चा शुरू होगी। भारतीय संविधान की स्वीकृति के 75वें वर्ष के अवसर पर यह बहस शुरू हो रही है। लोकसभा के सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार प्रश्नकाल के बाद भारत में संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चर्चा पर कल अपना मत रखेंगे। एक रिपोर्ट।
राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को ही इसका उत्तर देंगे। संविधान पर चर्चा संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मुख्य मांग रही है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति दी थी और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने भारतीय संविधान को स्वीकृति के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि उपशमन और तैयारी संबंधी कारगर उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं जरूर माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में अस्पष्टता और एक रूपता लाकर मजबूत करने का है।
बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगा। सुबह 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पटना समेत पूरे प्रदेश में 912 केंद्रों पर 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मुनभाई ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। प्रत्येक केंद्र पर जैमर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र रखना होगा, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित होगी। अध्यक्ष ने कहा, परीक्षा हॉल में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी।
सभी सेंटर पर हर एग्जाम की तरह इस बार भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। करीब 30,000 के ज्यादा कैमरा लगेगा और साथ ही साथ त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जैमर लगाए गए हैं और बच्चों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, आईरिस स्कैनिंग किया जाता है और उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट चेक।
इधर आर्थिक अपराध इकाई संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विशेष निगरानी कर रही है। किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8544428404 जारी किया गया है। कई जिलों में परीक्षा अवधि में फोटोकॉपी की दुकानें बंद की गई हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। कल पटना में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह और राकेश सचान शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सचान ने बिहारवासियों को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 25 प्रयागराज में आमंत्रण के लिए हम लोग बिहार आए हुए हैं। महाकुंभ भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत, दिव्य भारत जीवांत की झांकी है।
इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शकों के लिए तैयार किए गए सहायक चैट बोट का शुभारंभ करेंगे। इससे मेले का आयोजन अधिक व्यवस्थित और सुगम्य बन सकेगा। यह मेला 26 फरवरी तक चलेगा। पटना सहित पूरे प्रदेश के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर लघु आपराधिक मामले, बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में सर्द पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से राज्य में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं कैमूर और रोहतास जिले में अगले 2 दिन तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।
उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर सर्द हवाओं के साथ बिहार पर पहुंचने लगा है। मौसम शुष्क रहेगा। दिसंबर के पहले पखवाड़ा बीतते बीतते बिहार के कई जिलों में, कई शहरों और कई गांवों में तापमान गिरेगा। रोहतास और कैमूर के 1-2 स्थानों पर शीतलहर की संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ तराई वाले भागों में घना कोहरा की भी संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने कल सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाजपट्टी गोद गांव में छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले के संदेह में लियाकत अंसारी और उसके पुत्र अब्दुल अलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। टीम ने बिहार समेत 5 राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा है। इन याचिकाओं में पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसमें बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र, याचिकाकर्ताओं और अधिनियम का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलों का संकलन करने के लिए अधिवक्ता कनु अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा है कि प्रदेश में जनवरी से अगले शेष सभी पैक्स में चुनाव करा लिए जाएंगे। प्राधिकार के अनुसार इसके तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण रद्द हुए 103 और नगर निकाय के 200 पैक्स का चुनाव कराया जाएगा। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि शेष पैक्स के चुनाव में अब पैक्स गोदाम में बूथ नहीं बनाए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पिछले दिनों रद्द की गई कुछ स्पेशल ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार इनमें झंझारपुर पाटलिपुत्र स्पेशल, राजगीर पटना स्पेशल और गया पटना स्पेशल अप और डाउन की ट्रेन 14 से 19 दिसंबर तक परिचालित की जाएंगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने 8 पदक जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। प्रतियोगिता में बिहार के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इससे पहले इस प्रतियोगिता में बिहार को एक भी पदक हासिल नहीं हुआ था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीपीएस लैस 109 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दैनिक जागरण ने सचिवालय के सभी विभागों में राज्यकर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, देर से ऑफिस आएंगे तो बनेंगे दंड के भागी, वेतन भी कटेगा। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, राज्यकर्मी का दर्जा पाए 12,000 शिक्षक 2 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। अखबार लिखता है, 18,000 शिक्षक बगैर प्रमोशन के रिटायर होंगे। प्रभात खबर ने गिरते भू जल स्तर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार की पहल, सभी जिलों में कुएं, तालाब और पोखर की होगी मैपिंग। आज अखबार की सुर्खी है, विश्व शतरंज के बादशाह बने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुणेश। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव विधेयक की स्वीकृति दी, विधेयक पर 4 विधानसभाओं के अध्यक्षों से लिया जाएगा परामर्श। बिहार लोकसभा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, आज प्रदेश के 912 केंद्रों पर 4,80,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में कमी का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रोहतास और कैमूर जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। और भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने 8 पदक जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।